रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल में पेयजल और स्वच्छता के विकास के लिए नेपाल और भारत के बीच हुआ समझौता। काठमांडू के नए बस पार्क के सभी काउंटरों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग हुई शुरू। विश्व संपदाओं में सूचीकृत स्वयंभू स्थित प्रतापपुर और अनंतपुर मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ संपन्न। और रूस के विरूद्ध साइबर गतिविधि को रोकने का अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने किया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। आज पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के विकास से संबंधित समझौता पत्र पर नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेपाल सरकार की ओर से पेयजल मंत्री प्रदीप यादव और भारत सरकार की ओर से जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जानकारी पेयजल तथा गटर व्यवस्थापन विभाग के महानिदेशक इंजीनियर रामकुमार श्रेष्ठ ने दी। भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने और स्वच्छता क्षेत्र में अंतर सरकारी सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ नेपाल सरकार के जल सुरक्षा संबंधी प्रयासों और चिंताओं को स्वीकार करते हुए इस समझौते का उद्देश्य नेपाल में सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना और सुरक्षित वातावरण में लोगों की जीविका को सक्षम बनाना है। समझौते में भू जल प्रबंधन प्रविधि तथा सूचना का आदान प्रदान, वर्षा जल संग्रहण और मापन, प्रविधि साझेदारी और नेपाल सरकार को तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है। काठमांडू स्थित नए बस पार्क में अब सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए टिकट काउंटर की जगह ऑनलाइन टिकट प्रणाली शुरू की गई है। देश के एकमात्र राष्ट्रीय बस पार्क नया बस पार्क को प्रविधि अनुकूल बनाते हुए यात्रियों को सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिए बस पार्क के सभी 47 टिकट काउंटरों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा गया है। लोत्से बहुउद्देशीय प्रणाली के मानव संसाधन प्रमुख पंकज मल्ल ने बताया कि काठमांडू महानगर पालिका के साथ समझौते के तहत नया बस पार्क का संचालन कर रही कंपनी ने यातायात व्यवसायियों के सहयोग से टिकट काउंटरों को ऑनलाइन प्रणाली में शामिल किया है। काठमांडू महानगर पालिका 26 कुंगबू में स्थित इस बस पार्क से वर्तमान में देश के 70 जिलों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा सिंधु पालचोक, उखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप और खोटांग जैसे जिलों के लिए कोटेश्वर से भी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। नया बस पार्क के अलावा राजधानी के कलंकी, पुराना बस पार्क, गौशाला, कोटेश्वर और सोराखुट्टे से भी विभिन्न जिलों के लिए सवारी साधनों का संचालन किया जा रहा है। काठमांडू महानगर पालिका का लक्ष्य है कि सभी सवारी साधनों को नया बस पार्क से ही संचालित किया जाए। नए बस पार्क में वर्तमान में 800 वाहनों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, हालांकि इस समय यहां से केवल 350 से 400 वाहन ही विभिन्न जिलों के लिए आवागमन कर रहे हैं। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये केन्द्र बौद्ध अध्ययन संकाय के तहत स्नातकोत्तर स्तर और लघु अवधि के शैक्षणिक कार्यक्रमों को संचालित करेगा। विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर डॉ सुवर्णलाल वज्राचार्य ने आज लुम्बिनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि कैलिफोर्निया में अध्ययन केंद्र स्थापित होने के बाद कुछ ही सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पहल नेपाल और अमेरिका के बीच शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और बौद्ध शिक्षा को वैश्विक पहचान दिलाने में मददगार साबित होगी। विश्व संपदा में सूचीकृत स्वयंभू स्थित प्रतापपुर और अनंतपुर मंदिर का जीर्णोद्वार कार्य पूरा हो गया है। स्वयंभू के संरक्षण के लिए काम कर रहे स्वयंभू प्रबंधन और संरक्षण महासमिति ने इन दोनों मंदिरों के क्षतिग्रस्त होने और जोखिम में पड़ने के बाद लगभग एक वर्ष की अवधि में आवश्यक मरम्मत और जीर्णोद्वार का कार्य पूरा किया है। पुरातत्व विभाग ने मंदिरों को उनके मूल रूप में बहाल करने के लिए महासमिति को अनुमति दी थी। महासमिति के सचिव चंद्ररत्न बुद्धाचार्य ने बताया कि नई तकनीक का उपयोग करके मरम्मत और रंगने का काम पूरा किया गया है। विक्रम संवत 2072 साल के भूकंप के कारण इन मंदिरों को काफी नुकसान हुआ था। ये मंदिर प्रताप मल्ल द्वारा निर्मित ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की संपदा स्थल हैं। पूर्व राजा पारस शाह को पुनः हृदयघात होने के बाद नॉर्विक अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल में भर्ती शाह की कल रात को ही एंजियोप्लास्टी की गई थी और फिलहाल स्वास्थ्य में सुधार है, ये बात उनके इलाज में संलग्न चिकित्सकों ने बताई। चिकित्सक से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व युवराज शाह को हुआ यह चौथा हृदयघात है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देववा ने कहा कि कांग्रेस और एमाले गठबंधन की मौजूदा सरकार एकताबद्ध होकर आगे बढ़ रही है। पार्टी की केंद्रीय नीति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के आयोजन में आज से भैरहवा में शुरू हुए प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण में सभापति देववा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दो बड़ी पार्टियों के मिलकर सरकार बनाने से देश में आशा का संचार हुआ है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सुदूर पश्चिम प्रदेश का पहला सम्मेलन फागुन 26 गते को धनगढ़ी में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति द्वारा आज धनगढ़ी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सभापति वीर बहादुर बलायर ने कहा कि यह सम्मेलन जनता केन्द्रित कार्यक्रम और संगठन को मजबूत करने की योजना तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सभापति बलायर ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेश भर के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, अर्थव्यवस्था में आई शिथिलता और उससे उत्पन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही तीनों तहों की सरकारों को आवश्यक सुझाव भी दिए जाएंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि नैतिक मूल्य, सदाचार और योग एक सभ्य समाज की रीढ़ है। सर्वोदय सेवाश्रम द्वारा आयोजित नरकांत योग राष्ट्रीय पुरस्कार और भैरव सदाचार राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्थायित्व, समृद्धि और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए ये गुण अनिवार्य हैं। राष्ट्रपति पोडेल ने कहा कि योग शिक्षा, स्वस्थ जीवन शैली और मानव सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योग और सदाचार न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज को भी मजबूती प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि दलों को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं और आदर्शों को आत्मसात किए रखना होगा। पत्रकार गणेश पांडे द्वारा संपादित केपी शर्मा ओली सपना, संघर्ष और संकल्प नामक पुस्तक का आज प्रधानमंत्री ओली की उपस्थिति में लोकार्पण करते हुए पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने यह बात कही। मौके पर नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि वर्तमान सरकार और एमाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल की अवधारणा सहित लोकतंत्र को नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय सभा की विधायन व्यवस्थापन समिति में पानी जहाज के संचालन और व्यवस्थापन संबंधी कानून का संशोधन और एकीकरण करने के लिए बने विधेयक 2081 पर सैद्धांतिक विचार विमर्श हुआ। बैठक में पूर्व मंत्री एवं कानूनविद माधव प्रसाद पौडेल ने कहा कि नेपाल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नेपाली ध्वजावाहक जहाज चलाए जा सकने के हिसाब से सरकार द्वारा लाया गया विधेयक ऐतिहासिक होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूस के खिलाफ साइबर ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ इसके लिए अमेरिकी साइबर कमांड को आदेश दिए हैं। पेंटागन से जुड़े एक खुफिया अधिकारी के मुताबिक ये आदेश ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही दे दिए गए थे। इसका मकसद यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए रूस को बातचीत में शामिल करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन रूस के खिलाफ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों का रिव्यू कर रहा है, हालांकि इस बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को बातचीत की टेबल पर लाना जरूरी है। मार्को ने कहा कि अगर पुतिन के प्रति विरोधी रवैया अपनाया जाता है तो उन्हें टेबल पर नहीं ला पाएंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में पेयजल और स्वच्छता के विकास के लिए नेपाल और भारत के बीच हुआ समझौता। काठमांडू के नए बस पार्क के सभी काउंटरों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग हुई शुरू। विश्व संपदाओं में सूचीकृत स्वयंभू स्थित प्रतापपुर और अनंतपुर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ संपन्न। और रूस के विरुद्ध साइबर गतिविधि को रोकने का अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने किया निर्देश। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।